पाठ 26 अध्याय 25 जारी।
पाठ की शुरुआत में आज मैं आपके लिए वह वीडियो चलाना चाहता हूं जिसे मैं पिछले सप्ताह चलाना चाहता था, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के कारण ऐसा नहीं हो पाया। यह तंबू के बारे में सिर्फ 28 मिनट का वीडियो है, लेकिन यह बहुत बढ़िया बनाया गया है। वीडियो का रिजोल्यूशन बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए यह ना सोचें कि आपकी आंखों में परेशानी हो रही है। वीडियो चलाएं। आइए अब हम पीछे चलें और वाइल्डरनेस तंबू के भीतरी भाग की कुछ पवित्र वस्तुओं को अधिक ध्यान से देखें। निर्गमन 25 का 10 से 22 पुनः पढ़ें। हम टैबर्नकल के लिए इस्तेमाल किए गए सभी सोने, चांदी और कांस्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम थोड़ी देर बाद निर्गमन में सटीक मात्रा के बारे में जानेंगे, लेकिन अभी के लिए बस इतना जान लें कि इन सभी धातुओं का कुल वजन 8 टन के करीब था। अब उन्हें इतनी बड़ी मात्रा में कीमती धातुएं कहां से मिली, ये देखते हुए कि वे वहां बंजर भूमि में भटक रहे थे, वे इसे अपने साथ मिस्र से लाए थे। परमेश्वर ने इसराइल से कहा कि वे जाने से पहले मिस्र को लूट लें, मिस्र के लोगों से सोना और चांदी मांगें, और वे मिस्री उन्हें यह देने में बहुत खुश थे, बस उन इब्रानियों और उनके परमेश्वर से छुटकारा पाने के लिए जिन्होंने मिस्र को लगभग नष्ट कर दिया था।
इसीलिए हमें किसी भी तरह के संदेह के साथ आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। आइए इस बात का अंदाजा लगा लें कि इसराइल के लिए इतनी कीमती धातु को आसानी से जुटा पाना कितना आसान रहा होगा। 8 टन आवश्यक धातु को इकट्ठा करने के लिए प्रत्येक इसराइली को 1/12 औंस से भी कम की जरूरत पड़ी होगी। यह प्रति व्यक्ति लगभग एक छोटी बाली के बराबर है, और यह अकल्पनीय है कि उनके पास प्रति व्यक्ति इससे कई गुना अधिक धातु नहीं थी।
परमेश्वर के निर्देश पद 10 में सबसे पवित्र साज सज्जा वाचा के संदूक से शुरू होते हैं, जिसे तंबू के सबसे पवित्र कमरे में रखा जाना है। इसे उचित रूप से परम पवित्र कहा जाता है। संदूक परमेश्वर की उपस्थिति और उसके सिंहासन का प्रतीक है। संदूक की संरचना बबूल की लकड़ी से बनाई जानी थी, एक बहुत ही कठोर, बहुत सघन सामग्री जो रेगिस्तानी क्षेत्रों, विशेष रूप से अरब प्रायद्वीप में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। बबूल के पैर के लिए इब्रानी शब्द शित्तिम है। संदूक 4 फीट से थोड़ा कम लंबा था और 2 फीट से थोड़ा ज्यादा गहरा था, और यह जितना गहरा था उतना ही चौड़ा भी था।
अब अधिकांश बाइबलें तंबू और उसके साज सामान के सभी मापों को क्यूबिट में व्यक्त करेंगी, लेकिन विद्वान इस बात पर असहमत हैं कि एक क्यूबिट कितना लंबा होता है। उनके अनुमान 18 इंच से लेकर लगभग 21 इंच तक होते हैं। इसीलिए हम सटीक रूप से नहीं जानते। हम केवल तंबू और उसके साज सामान के लगभग 10% प्लस या माइनस माप ही जानते हैं।
तकनीकी रूप से संदूक स्वयं एक आयताकार संदूक था, भंडारण कक्ष, क्योंकि ढक्कन एक अलग वस्तु थी, जिसे दया सीट, जिस पर करूब है, कहा जाता था, जिसे कुछ हद तक अलग माना जाता था, फिर भी आम शब्दों में और आम तौर पर बाइबल में भी। जब संदूक का संदर्भ दिया जाता था तो इसमें भंडारण संदूक और उसका ढक्कन दोनों शामिल होते थे। संदूक अंदर और बाहर से सोने से ढका हुआ था। दया का आसन, संदूक का ढक्कन सोने का एक ठोस स्लैब था जिसके ऊपर 2 करूब थे। इब्रानी में इस ढक्कन को कपोरेट कहा जाता है, जिसका अर्थ है प्रायश्चित का स्थान। ऐसा इसलिए है क्योंकि पद 22 में परमेश्वर कहता है कि यहीं पर वह मूसा से मिलकर मूसा को इज़राइल के लिए निर्देश देगा। यह वह स्थान भी होगा जहां प्रायश्चित के दिन योम किप्पुर पर महायाजक पूरे इसराइल के पापों का प्रायश्चित करने के लिए खड़ा होगा। हम ढक्कन को दया का आसन इसलिए कहते हैं क्योंकि संदूक परमेश्वर के सिंहासन का प्रतीक है, वह स्थान जहां दयालु परमेश्वर बैठते हैं और लोगों के पापों के लिए वार्षिक प्रायश्चित स्वीकार करते हैं। अब क्रूब, जो दया आसन की प्रमुख विशेषता है, दिलचस्प जीव हैं। हमें बताया गया है कि परमेश्वर ने ईडन गार्डन में क्रूबों को तैनात किया था, और जीवित प्राणी जिन प्राणियों या जीवित प्राणियों के चेहरे 4 प्रमुख इजरायली कबीलाओं, टबरनेकल के 4 पक्षों में से प्रत्येक पर स्थित के प्रतीकों के समान थे, उन्हें यहूदी ऋषियों द्वारा क्रूप भी माना जाता है। इसलिए आश्चर्य की बात नहीं है कि हम उन्हें पृथ्वी पर परमेश्वर के सबसे पवित्र स्थान पर पाते हैं। वे स्पष्ट रूप से यहोवा के लिए एक अन्य प्रकार के संरक्षक या सेवक हैं।
हमें यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता कि करूब कैसे दिखते हैं। आज हम उनके जो चित्र देखते हैं उनमें छोटे पंखों और अफ्रीकी बालों वाले गोल मटोल छोटे बच्चे से लेकर पैरों से लेकर सिर के ऊपर तक फैले पंखों वाले वयस्क मनुष्य जैसे जीव शामिल हैं। आज हमारे पास आर्क और उसके करूबों के साथ दया सीट के विभिन्न चित्रण हैं जो उनके दिखने के बारे में सिर्फ अनुमान हैं। अगर आर्क कभी मिल जाता है तो मुझे लगता है कि हम निश्चित रूप से जान जाएंगे।
संदूक इतना पवित्र है कि एक बार बन जाने और काम में लग जाने के बाद इसे कभी भी मनुष्य के हाथों से नहीं छुआ जा सकता। यहां तक कि साल के सबसे पवित्र दिन योम किप्पुर प्रायश्चित के दिन जब महायाजक परम पवित्र स्थान में प्रवेश करता है और संदूक के सामने खड़ा होता है तो वह काफी पीछे रहता है और 6 या 7 फीट की दूरी से बलि का खून संदूक पर छिटकता है। क्योंकि संदूक को छूना नहीं था इसलिए संदूक पर छल्ले लगाए गए थे और संदूक को ले जाने के लिए डंडे उन छल्लों में से गुजरते थे। डंडों को कभी भी हटाया नहीं जाना था। बाद में पवित्र शास्त्र में हम एक घटना के बारे में पढ़ते हैं जिसमें संदूक को ले जाते समय गिरने वाला था और संदूक उठाने वालों में से एक ने सहज रूप से उसे संभालने के लिए संदूक पर अपना हाथ रखा, वह तुरंत मर गया। यहां कुछ महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दें। पद 22 में हमें बताया गया है कि परमेश्वर की आत्मा संदूक के ऊपर आकर विश्राम करती है, संदूक पर नहीं बल्कि कप्पोरेट ढक्कन से जुड़े करूबों के ऊपर और बीच में जब वह मूसा से बात करना चाहता है। यहां तक कि संदूक भी इतना पवित्र और शुद्ध नहीं है कि यहोवा की पवित्रता उसके संपर्क में आ सके, क्योंकि भले ही यह परमेश्वर की रचना है लेकिन यह मनुष्य द्वारा बनाई गई है। याद रखें, इतिहास के इस बिंदु पर परमेश्वर की पवित्र आत्मा मनुष्य में निवास नहीं करती थी। वह मनुष्य के ऊपर या मनुष्यों के बीच रहता था लेकिन मनुष्य के भीतर नहीं। आज पेंटेकोस्ट के बाद से वही पवित्र आत्मा जो दया के आसन के ऊपर मंडराती थी वह हम विश्वासियों में भी वास करती है। मुझे लगता है कि हमें यह भी महसूस करने की जरूरत है कि ईश्वर की पवित्र आत्मा का मनुष्य में वास करने की अवधारणा उन भटकते हुए इसराइलियों के लिए उतनी ही हास्यास्पद थी जितनी कि मसीह के दिनों के यहूदियों के लिए अनुष्ठान और तंबू और मंदिर के डिजाइन दोनों में बहुत मेहनत की गई थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ईश्वर की आत्मा मनुष्यों से अलग रहे। यहां तक कि हर साल उस एक दिन भी जब महायाजक परम पवित्र स्थान में प्रवेश करता था न तो लोग और न ही वर्तमान महायाजक को यकीन था कि वह जीवित बाहर निकलेगा। यह कोई आरामदायक शांतिपूर्ण अनुष्ठान नहीं था जिससे महायाजक गुजरा। वह डर गया था और लोग भी डर गए थे। रास्ते में कभी कभी उन्होंने महायाजक के टखने के चारों ओर रस्सी बांध दी ताकि अगर उसका रुकना सामान्य से ज्यादा हो जाए तो उसे बाहर निकाला जा सके, क्योंकि अगर परमेश्वर ने उसे पवित्रतम स्थान में मार दिया होता किसी भी कारण से तो उनके पास शव को वापस लाने का कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि केवल महायाजक को ही अंदर जाने की अनुमति थी। यहां तक कि प्रतिस्थापन महायाजक भी उस शव को बाहर नहीं निकाल सकता था क्योंकि महायाजक कभी भी शव को छू नहीं सकते थे। इसलिए मुझे संदेह है कि अगर वे इस बात पर भी विश्वास करते कि ईश्वर की आत्मा किसी व्यक्ति के अंदर निवास कर सकती है तो वे इस संभावना से भयभीत हो जाते। एक बार जब प्रेरितों ने आखिरकार इस सिद्धांत को समझ लिया तो हम देखते हैं कि वे अलग अलग व्यक्ति बन गए, निडर, साहसी, सुसमाचार के प्रति समझौता न करने वाले। हम में से ज्यादातर लोग इसे हल्के में लेते हैं और इस सत्य के रहस्य पर उतना विचार नहीं करते जितना हमें करना चाहिए। मुझे लगता है कि शायद हमें विस्मय में होना चाहिए, अगर थोड़ा भयभीत नहीं होना चाहिए कि ईश्वर की पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहती है। कृपया यह भी समझें कि परमेश्वर के निवास स्थान के रूप में तंबू का विचार प्रतीकात्मक है। परमेश्वर कपड़े और जानवरों की खाल से बने घर तक सीमित नहीं था जिसे जब भी वह कहीं जाना चाहता था तो उसे ले जाना पड़ता था। परमेश्वर आत्मा है, वह एक ही समय में हर जगह हो सकता है या एक ही समय में हर जगह से अनुपस्थित हो सकता है और बीच में हर संभव स्थिति में हो सकता है। तंबू इसलिए बनाया गया था ताकि मानव जाति यहोवा के कुछ पहलुओं, वर्तमान और भविष्य को समझ सके, और इसलिए परमेश्वर मूसा से मिल सके और साल में एक बार नियत समय पर महायाजक से मिल सके। हमारे आधुनिक पश्चिमी सोच के अनुसार तंबू एक घर नहीं था, यह एक सम्मेलन कक्ष था जहां लोग विशिष्ट उद्देश्यों के लिए विशिष्ट समय पर एकत्र होते थे। आज जब पवित्र आत्मा यीशु के शिष्यों में निवास कर रही है तो हमें मूसा की तरह परमेश्वर से संवाद करने के लिए नियत समय तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। हमें किसी विशिष्ट भवन में जाने या चर्च या आराधनालय के सत्र शुरू होने तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। जहां हम आज मिल रहे हैं वह परमेश्वर का घर नहीं है, न ही मेरे दोस्तों कोई चर्च भवन या आराधनालय परमेश्वर का घर है, बल्कि यह परमेश्वर के लोगों का घर है। हम व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से परमेश्वर का घर है। इब्रानियों 3:6 को देखें, संत पौलुस कहते हैं, परंतु मसीह परमेश्वर के घराने के अधिकारी के रूप में पुत्र के समान विश्वास योग्य है और हम परमेश्वर के घराने हैं।
संदूक वह साधन और स्थान था जिसके द्वारा परमेश्वर मनुष्यों के बीच निवास करता था। यह यीशु के बारे में प्रतीकात्मक और भविष्य सूचक था जो मनुष्यों के बीच निवास करेगा। परमेश्वर भौतिक देह में मनुष्यों के बीच रहता है। यहां तक कि संदूक के अंदर जो कुछ भी था वह मसीह के व्यक्तित्व को दर्शाता था। नवोदित छड़ी, मन्ना का जार और 10 आज्ञाओं की पत्थर की पटियाएं। एक छड़ी, जिसे बाइबल में कभी कभी छरी भी कहा जाता है, अधिकार का प्रतीक थी। जब मूसा ने घोषणा की कि हारून महायाजक होगा तो जनजातीय नेताओं में बहुत अशांति थी। महायाजक के पास बहुत शक्ति और अधिकार था और वह पूरे इसराइल पर सरकार का मुखिया था, इसलिए सभी जनजातीय नेता महायाजक बनना चाहते थे। इस समस्या का कारण यह तथ्य था कि हारून मूसा का भाई था। क्योंकि हारून और मूसा दोनों ही लेवी थे, इसलिए सत्ता केवल लेवी कबीले के पास ही थी, जो मूसा के मरने तक बनी रही और एप्रैम के गोत्र से यहोशू ने सत्ता संभाली। इसलिए झगड़े को निपटाने के लिए परमेश्वर ने गोत्र के नेताओं से कहा कि वे अपनी अपनी छरियाएं मूसा को दें, जिन्होंने उन्हें संदूक के सामने रख दिया। हारून की छरियों में बादाम के फूल खिले और उनमें कलियां खिली, जो इस बात का संकेत था कि हारून ही परमेश्वर की ओर से महायाजक के लिए चुना गया था। इसलिए खिली हुई छरियां महायाजक के पद और उस कबीले का प्रतीक थीं जिससे भविष्य के सभी महायाजक आने वाले थे, यानी लेवी का गोत्र। हमें बताया गया है कि मसीह हमारा महायाजक है, हालांकि वह लेवी नहीं है, वह यहूदा के गोत्र से है। हम अभी इसके महत्व के बारे में विस्तार से नहीं बताएंगे। मन्ना का बर्तन, जो इसराइलियों के जंगल में रहने के दौरान परमेश्वर की ओर से भेजा गया स्वर्गीय भोजन था, जीवन की रोटी का प्रतीक था, ईश्वरीय जीवन के वास्तविक पोषण का स्रोत, न कि मात्र अस्तित्व मसीह हैं, जिन्होंने स्वयं को जीवन की रोटी कहा। यह समझना महत्वपूर्ण है, यीशु ने स्वयं को मन्ना कहा।
और बेशक संदूक के अंदर 10 दबर, 10 वचनों की पत्थर की पटियाएं रखी थीं, जो मानव जाति के लिए परमेश्वर के सभी वचनों के पीछे अंतर्निहित सिद्धांत थे और आज भी हैं। वे वचन हर विश्वासी के हृदय पर लिखे हैं। और बेशक यूहन्ना हमें बताता है कि मसीह ही वचन है। इसलिए हमारे पास हारून की छरी है, जो मसीह के उच्च पुजारी के रूप में अधिकार का प्रतीक है। मन्ना का बर्तन, मसीह जीवन की रोटी हमारा मन्ना है, और परमेश्वर के वचन की पत्थर की पटियाएं मसीह परमेश्वर का वचन है। संदूक मसीहा का प्रतीक था, जिसके भीतर ये 3 मूलभूत स्वभाव थे। वह पृथ्वी पर परमेश्वर की दृश्यमान उपस्थिति बन गया और उसके पुनर्जीवित होने और स्वर्ग में छरहने के बाद पवित्र आत्मा हम विश्वासियों में वास करने के लिए आया, ठीक उसी तरह जैसे वह इतने सालों पहले तंबू में वास करता था। इसीलिए संत पौलुस कहता है कि हम वर्तमान युग में परमेश्वर का तंबू, यहोवा का निवास स्थान है।
पुनः पढ़ें निर्गमन 25:23। पद 23 से शुरू होकर शोभरेड की मेज के लिए खाका वर्णित किया गया है। शोब्रेड की मेज को पवित्र स्थान की उत्तरी दीवार पर रखा गया था, परम पवित्र स्थान से सटा हुआ कमरा। वाचा के संदूक की तरह ही मेज को बबूल की लकड़ी से एक फ्रेम के रूप में बनाया जाना था और फिर शुद्ध सोने से मरह जाना था। मेज 3 फीट लंबी, 1 फीट चौड़ी और लगभग 2 फीट ऊंची होनी थी। इस पर 12 रोटियां रखी जानी थी जो इसराइल के 12 गोत्रों का प्रतिनिधित्व करती थी। अजीब लगने वाला शब्द शोब्रेड इन रोटियों के लिए मूल इब्रानी का अनुवाद करने का सिर्फ एक प्रयास है, लेचेम पनेम। लेचेम एक साधारण इब्रानी शब्द है जिसका अर्थ है रोटी। पनिम एक अजीब शब्द है जिसका अनुवाद करना मुश्किल है, जिसका अर्थ है चेहरा। लेकिन चेहरा का मतलब तब कुछ अलग था जो आज हम इसके बारे में सोचते हैं। बाइबल में जब किसी का या परमेश्वर का चेहरा आप पर होता है तो इसका मतलब है कि उसकी उपस्थिति आपके साथ है। इसलिए कभी कभी शो ब्रेड को उसकी उपस्थिति की रोटी कहा जाता है, यानी परमेश्वर की उपस्थिति की रोटी, जो अधिक शाब्दिक है।
बाद में इस पवित्र शोभ्रेड के लिए एक सटीक नुस्खा दिया जाएगा और प्रत्येक सप्त के दिन रोटी को 12 ताजा रोटियों से बदला जाएगा और पुरानी रोटियों को पुजारी द्वारा खाया जाएगा। पवित्र परिसर, दूसरे शब्दों में, वे तंबू के क्षेत्र से रोटी नहीं ले जा सकते थे, लेकिन इसे उस विशेष रोटी से भ्रमित न करें जिसे इसराइली हर सप्त के दिन अपने इस्तेमाल के लिए पकाते थे, छल्ला रोटी, जिसे इजरायली परिवार अपनी मेज के चारों ओर खाते थे। शोब्रेड और छल्ला ब्रेड पूरी तरह से अलग थे। एक बात यह है कि भले ही बाइबल में स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा गया है, शोब्रेड अखमीरी रोटी थी। ऐसा होना ही था क्योंकि यह एक भोजन की भेंट थी और सभी भोजन की भेंटों की यह एक आवश्यकता थी कि इसमें कोई खमीर या खमीर का उपयोग न किया जाए, क्योंकि खमीर पाप का प्रतीक है। हालांकि छल्ला ब्रेड खमीर वाली रोटी हो सकती है। बाइबल वास्तव में इस शो ब्रेड के प्रतीकात्मक कारण के बारे में बहुत अधिक विवरण नहीं देती है। परिणाम स्वरूप हमारे पास इसके बारे में कई व्याख्याएं और सिद्धांत हैं, जिनमें से अधिकांश में यह विचार शामिल है कि ये रोटियां जीवन की रोटी का प्रतिनिधित्व करती हैं और इसलिए मसीह की उस सेवकाई का प्रतिनिधित्व करती हैं जो चर्च के लिए जीवन की रोटी है। शायद समस्या यह है कि यह व्याख्या स्पष्ट रूप से स्पष्ट बात को हटा देती है। 12 रोटियां 12 कबीलाओं को दर्शाती हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, इसलिए इसका नाम उनकी उपस्थिति की रोटी है और यह कि वह उनके लिए जीविका का एक पाप रहित स्रोत प्रदान करेगा। यह अखमीरी रोटी का उपयोग करने का विचार है। बेशक जीविका का यह पाप रहित स्रोत जिसे हम समझते हैं वह मसीह है, लेकिन निर्गमन 25 में यह विशेष स्रोत इसराइल की 12 कबीलाओं के लिए था, 12 रोटियों द्वारा दर्शाया गया। यह गैर इब्रानियों के लिए नहीं था। वाचा, तंबू, सब कुछ इसराइल के 12 गोत्रों के लिए और उनके साथ था। तो आइए हम खुद को याद दिलाते रहें कि जैसा कि संत पौलुस ने कहा, हम गैर यहूदी इसराइल की वाचाओं में शामिल हो गए हैं, उसमें शामिल हो गए हैं, वे वास्तव में हमारी वाचाएं नहीं हैं।
दिलचस्प बात यह है कि शोब्रेड के साथ मेज पर शराब भी रखी गई थी। शराब और अखमीरी रोटी, अब इससे क्या छवि उभरती है? बेशक भोज, पूर्व पुनः प्रहें 25:30-39। इसके बाद हम गोल्डन लैंप स्टैंड पर आते हैं जो शोब्रेड की मेज के सामने पवित्र स्थान के दक्षिण की ओर खड़ा था। लैंप स्टैंड के लिए इब्रानी शब्द मेनोरा है। अब तकनीकी रूप से जैसे वाचा का संदूक केवल भंडारण संदूक है, ढक्कन नहीं, दया सीट, वैसे ही मेनोरा एक कैंडेलबरा या एक लैंप स्टैंड है, यानी यह मोमबत्तियों या तेल के लैंप का धारक है। लेकिन मोमबत्तियाँ और तेल के लैंप अलग अलग टुकड़े हैं, जैसे दया सीट संदूक से अलग है। मेनोराह प्रकाश प्रदान नहीं करता है, यह केवल प्रकाश के स्रोतों के लिए एक स्थान प्रदान करता है, बैठना। मूल मेनोराह का वजन लगभग 70 पाउंड था क्योंकि इसे सोने की एक प्रतिभा से बनाया गया था। इसे पिघलाकर सांचे में नहीं डाला गया था, जैसा कि उस समय सबसे कीमती धातु का काम किया जाता था और आज भी किया जाता है। यह वस्तुतः सोने के एक बड़े टुकड़े से गढ़ा गया था। तंबू का मेनोराह 30 फुट लंबे,
15 फुट चौड़े, 15 फुट ऊंचे कमरे पवित्र स्थान के लिए प्रकाश का एकमात्र स्रोत था जिसमें यह स्थित था। मेनोराह में 7 तेल के दीपक थे जो ईंधन के रूप में एक विशेष जैतून के तेल का उपयोग करते थे। मेनोराह में एक केंद्रीय तना था और फिर तने के प्रत्येक तरफ 3 शाखाएं थीं, जिससे इसकी कुल 7 भुजाएं या शाखाएं बन गईं। इसलिए इन 7 तेल के दियों को रात भर जलाए रखना पड़ता था और दिन भर दीपक कभी नहीं बुझने चाहिए थे, और इस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी याजकों पर थी। मेनोराह पर प्राथमिक सजावट बादाम है जो अपने विभिन्न चरणों में है। बादाम क्यों? अच्छा, हारून के डंडे से इसका संबंध देखें जो बादाम के फूलों से भरा हुआ था और फिर बादाम का उत्पादन किया। यहूदी संतों का कहना है कि बादाम का मैं खिलने वाला पहला फल था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि क्योंकि वह मृत छरी जो हारून की छरी थी जीवित हो गई और खिल गई और फल बादाम का उत्पादन किया, इसलिए बादाम पुनरुत्थान का प्रतीक है। मैं इस बात से सहमत हूं, पहला फल और पुनरुत्थान यीशु के लिए अधिक भविष्य सूचक और प्रतीक नहीं हो सकता। मेनोराह शायद दाऊद के तारे के बाहर यहूदी लोगों का सबसे पहचाना जाने वाला प्रतीक है, और यह आज भी विशेष रूप से ऐसा ही है। निश्चित रूप से मेनोराह यहूदी लोगों का सबसे पुराना प्रतीक है जो दाऊद के तारे के अस्तित्व में आने से कम 1000 साल पहले और संभवतः उससे भी अधिक पुराना है। रब्बियों और इब्रानी संतों ने मेनोराह के बारे में कुछ दिलचस्प अनुमान लगाए हैं, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि मेनोराह की शाखाओं वाले पैर से स्पष्ट समानता है। कई रब्बियों का कहना है कि मेनोराह अदन के बगीचे में जीवन के पैर का प्रतिनिधित्व कर सकता है। मुझे लगता है कि यह पूरी तरह से संभव है। अब अधिकांश गैर यहूदियों की अपेक्षा के विपरीत 7 शाखाओं वाला मेनोराह, तंबू या मंदिर मेनोराह, हमारे समय में एक यहूदी घराने में कभी नहीं जलाया जाता है। कारण, यह केवल मंदिर के साथ संयोजन में उपयोग के लिए एक विशेष उपकरण के रूप में था। कुछ मायनों में यहूदियों के लिए यह मंदिर की याद दिलाता है। इसलिए चूंकि 1900 से अधिक वर्षों से कोई मंदिर नहीं है, इसलिए यहूदियों के लिए 7 शाखाओं वाला मेनोराह जलाना अप्रासंगिक है। कोई मंदिर नहीं, मेनोराह की कोई आवश्यकता नहीं। आज अधिकांश यहूदी घरों में 7 शाखाओं वाला मेनोराह भी नहीं है, हालांकि 9 शाखाओं वाला मेनोराह है। आपको बाइबल में इसका उल्लेख नहीं मिलेगा। 9 शाखाओं वाला मेनोराह यीशु के जन्म से लगभग 1 सदी पहले आया था। इसका आविष्कार चानुका के उत्सव में किया गया था, जिसे समर्पण का पर्व या रोशनी का त्योहार भी कहा जाता है। ये जूडस मैकाबी द्वारा मंदिर को वापस लेने और शुद्ध करने की याद में मनाया जाता है, जिसने एंटियोकस एपिफेनीज के खिलाफ विद्रोह में यहूदियों का नेतृत्व किया था। एपिफेनीज रोम के एक दुष्ट कठपुतली गवर्नर जिसने पवित्र भूमि पर शासन किया था, ने मंदिर पर कब्जा कर लिया था, कई मूल्यवान वस्तुओं को हटा दिया था और पवित्रतम स्थान में ज़ियूस सूर्य देवता के रूप में अपनी एक मूर्ति रखकर इसे अपवित्र कर दिया था। फिर उसने मूर्ति के लिए एक सूअर की बलि दी, मांस को उबाला और उसके शोरबे को मंदिर के तरह स्क्रॉल पर डाल दिया। जब यहूदी विद्रोहियों ने आखिरकार मंदिर वापस ले लिया, क्योंकि पुजारी मारे गए थे, मेनोराह लैंप को एक दिन से ज्यादा जलाने के लिए ठीक से तैयार और पवित्र जैतून के तेल की पर्याप्त आपूर्ति नहीं थी। लेकिन उस एक दिन की आपूर्ति जो चमत्कारिक रूप से 8 दिनों तक जलती रही, जब तक कि लेविटिकल कानून के अनुसार और अधिक नहीं बनाया जा सका, इसलिए इस विशेष मेनोराह की 8 शाखाएं 8 दिवसीय चमत्कार का प्रतिनिधित्व करती हैं, और 9वीं शाखा का उपयोग अन्य को जलाने के लिए किया जाता है। पर्यवेक्षक यहूदी घर में 9 शाखा मेनोराह, एक चानुका मेनोराह होता है, और वे इसे चानुका के दौरान जलाते हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वर्ष का वह समय जिसे हमने मसीह के जन्म का जश्न मनाने के लिए चुना है, संयोग से चानुका के साथ ही होता है। मैं आपको यह बताता हूं, निकट भविष्य में जब यरूशलेम में मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाएगा, जैसा कि अंतिम समय की भविष्यवाणियों में कहा गया है, तो मैं निश्चित रूप से 7 शाखाओं वाला मेनोराह रियायत चाहूंगा। क्योंकि वह मंदिर अचानक से पुनः बहुत प्रासंगिक हो जाएगा और बहुत सारे यहूदी और संभवतः ईसाई भी उन सात शाखाओं वाले मेनोराह रियायत को चाहेंगे।
टेबरनेकल मेनोराह और उसके दीपक दुनिया की रोशनी का प्रतीक है, मसीह सच्ची और शुद्ध रोशनी। यह अवधारणा विशेष रूप से प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में ध्यान देने योग्य है, जहां चर्च यीशु का सांसारिक विस्तार को मेनोराह, एक सुनहरा दीपक स्टैंड के रूप में दर्शाया गया है, और हमें चेतावनी दी गई है कि अगर हम अपने पहले प्यार यीशु का पालन नहीं करते हैं तो हमारे मेनोराह छीन लिए जाएंगे। विश्वासियों के रूप में हमारा उद्देश्य एक अंधेरी दुनिया के लिए रोशनी बनना है। अगर हम वह नहीं हैं तो हम किसी काम के नहीं हैं। हम बिना तेल के मेनोराह की तरह हैं, मेनोराह जिन्हें दिन रात जलाया जाना चाहिए लेकिन हमारी लपटें बुझ गई हैं। अगले सप्ताह हम निर्गमन अध्याय 26 में तंबू पवित्र स्थान का अध्ययन शुरू करेंगे।